तारीख 1 जून, दिन सोमवार। दिन भर में अभिवादन स्वीकार करें समीर आत्मज मिश्र का। बांग्लादेश में 2 साल पहले हुए फैक्ट्री हादसे में फैक्ट्री मालिक समेत 42 लोगों पर लगा हत्या का अभियोग। जयललिता को बरी किए जाने के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाएगी कर्नाटक सरकार। कर्नाटक के कानून मंत्री टीबी जयचंद।
As per law, to appeal against an order, 90 days is there.
पाकिस्तान के पेशावर में हिंदू समुदाय की घटती आबादी और हालात पर होगी खास रिपोर्ट।
लोग नजर नहीं आते ना बिजनेसेस में, ना कल्चर में, ना उनकी ड्रेस के हवाले से। जब विजिबिलिटी नहीं है तो वो ना सरकार को नजर आते हैं ना किसी और को नजर आते हैं।
श्रोताओं के पत्रों के अलावा चर्चा होगी खेल जगत की भी, लेकिन पहले BBC समाचार।
BBC समाचार, हरिता कांडपाल से। बांग्लादेश में राना प्लाजा फैक्ट्री कॉम्प्लेक्स के मालिक सुहेल राना समेत 42 लोगों पर हत्या के आरोप में मामला चलाया जाएगा। 2013 में राना प्लाजा कॉम्प्लेक्स की इमारत ढह जाने से 1000 से ज्यादा लोग मारे गए थे। पहले इन पर गैर इरादतन हत्या का मामला दर्ज किया गया था। हादसे से पहले इमारत के सुरक्षित होने पर सवाल उठाए जा रहे थे, लेकिन कोई कदम नहीं उठाया गया था। मलेशियन एयरलाइंस ने अपने 1/3 कर्मचारियों यानी 6000 कर्मचारियों को निकालने की घोषणा की है। पिछले साल मलेशियन एयरलाइंस ने 2 विमान अलग अलग हादसों में खो दिए थे। मार्च 2014 में कुआलालंपुर से बीजिंग जा रहा विमान गुम हो गया था, जिसका अब तक कुछ पता नहीं चल पाया है। वहीं जुलाई 2014 में कथित तौर पर मलेशियन एयरलाइंस के विमान को यूक्रेन में उड़ा दिया गया था। एयरलाइंस कंपनी के जर्मन मुख्य अधिकारी क्रिस्टोफर म्यूलर ने बताया, कंपनी दिवालिया हो चुकी है। 2014 के हादसों से पहले ही कंपनी के प्रदर्शन में कमी आ गई थी, इसलिए कंपनी के मुख्य शेयरधारक खजाना ने पिछले साल जनवरी से ही कंपनी के नवीनीकरण के प्रोजेक्ट की शुरुआत की थी। हालांकि हादसे के बाद इस पर से ध्यान हट गया था। ये थे मलेशियन एयरलाइंस के जर्मन मुख्य अधिकारी क्रिस्टोफर म्यूलर के शब्द। आप सुन रहे हैं BBC समाचार। BBC की छानबीन में सामने आया है कि सीरिया में अलकायदा से संबंधित संगठन नुसरा फ्रंट में भर्ती के लिए बच्चों को निशाना बनाया जा रहा है। 15 साल के एक लड़के ने BBC को बताया कि वो नुसरा फ्रंट के लिए लड़ाई में शामिल हो चुका है और उसने कत्ल भी किए हैं। एक युवक ने बताया कि इस्लामिक स्टेट के लड़ाकों पर किए गए एक नाकाम बम हमले में वो पकड़ा गया और उसे प्रताड़ित भी किया गया। इराक के अनबार प्रांत से आ रही रिपोर्ट के मुताबिक इस्लामिक स्टेट के आत्मघाती हमलों में सुरक्षा बलों के 45 सदस्यों के मारे जाने की खबर है। हमलावरों ने विस्फोटकों से लदी 3 बख्तरबंद गाड़ियां रामादी शहर में सैनिक बेस में घुसा दी। व्हाइट हाउस ने बड़े पैमाने पर अमरीकी नागरिकों के फोन डेटा इकट्ठा करने के लिए आतंक निरोधी कानून में बदलाव नहीं कर पाने के लिए अमरीकी सीनेट को गैर जिम्मेदार बताया है। अमरीकी प्रशासन नेशनल सिक्योरिटी एजेंसी को अमेरिकी नागरिकों के फोन डेटा इकट्ठा करने की इजाजत दिलवाना चाहता है, लेकिन सीनेट में बहुमत रखने वाले रिपब्लिकन समझौते पर नहीं पहुंच पाए हैं। अमरीकी सीनेट में इस हफ्ते के अंत में फिर से इस मुद्दे पर वोटिंग हो सकती है। चीन की राजधानी बीजिंग में धूम्रपान पर प्रतिबंध लगने के पहले ही दिन एक मशहूर रेस्तरां को पहली चेतावनी मिल चुकी है। BBC समाचार।
BBC हिंदी से आप सुन रहे हैं कार्यक्रम दिनभर। मैं हूं समीर आत्मज मिश्र। 2 साल पहले बांग्लादेश में राना प्लाजा फैक्ट्री कॉम्प्लेक्स की इमारत ढह जाने से 1000 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई थी। ढाका पुलिस ने आज इस इमारत के मालिक सुहेल राना समेत 42 लोगों पर हत्या का आरोप लगाया है। पहले इन लोगों पर गैर इरादतन हत्या का मामला दर्ज था, लेकिन मामले की गंभीरता और इनकी कथित लापरवाही को देखते हुए सीधे हत्या के आरोप लगाए गए हैं। BBC संवाददाताओं का भेजा ब्यौरा सुनिए रोहित जोशी से।
2013 में अप्रैल महीने की 24 तारीख को बांग्लादेश की राजधानी ढाका में राना प्लाजा फैक्ट्री कॉम्प्लेक्स की इमारत भरभराते हुए गिर गई थी। इसमें तकरीबन 1000 से ज्यादा लोग मारे गए और 2000 से ज्यादा लोग घायल हुए थे। बांग्लादेश के इतिहास में हुए अब तक के इस सबसे भयंकर औद्योगिक हादसे के ठीक एक दिन पहले चेतावनी जारी की गई थी कि इस जर्जर इमारत में लोगों को काम करने से मना कर दिया जाए, लेकिन इस चेतावनी की अनदेखी हुई और हादसे के समय इमारत में तकरीबन 5,000 लोग मौजूद थे। अब पुलिस ने इस हादसे के लिए आरोपी ठहराए गए लोगों पर हत्या का आरोप लगाते हुए चार्जशीट दाखिल की है। इस इमारत के मालिक सोहेल राणा के अलावा इन मौतों के लिए 48 और लोगों पर भी हत्या के आरोप लगाए गए हैं, जिनमें तकरीबन एक दर्जन सरकारी अधिकारी भी शामिल हैं। पहले इन लोगों पर गैर इरादतन हत्या के आरोप लगाए गए थे, लेकिन मामले की गंभीरता और इनकी कथित लापरवाही को देखते हुए अब इस मामले में सीधे हत्या के आरोप लगाए गए हैं। अगर ये आरोप साबित हो जाते हैं तो इन आरोपियों को मौत की सजा दी जा सकती है। इस मामले की जांच कर रहे मुख्य जांचकर्ता बिजॉय कृष्णकार ने कहा है कि आगे की कार्रवाई को निर्धारित करने के लिए कोर्ट की सुनवाई 28 जून को हो सकती है। इस हादसे में किसी तरह बच गई आयशा अख्तर पुलिस के काम करने की धीमी रफ्तार से आहत हैं। आयशा कह रही थी कि इसमें इतना लंबा वक्त क्यों लगा। अगर आप जिम्मेदारी से काम करें, अगर आप कोशिश करें तो कुछ भी हो सकता है। हमें समझ नहीं आता कि इतना लंबा समय क्यों लग रहा है। मुझे मालूम है अभी ट्रायल में और भी समय लगेगा। अगर इतना ही लंबा समय लगता रहा तो कोई भी इस बात की परवाह नहीं करेगा कि राणा प्लाजा में क्या हुआ था। हमें न्याय मिलेगा भी या नहीं, हमें इस बात की चिंता है। नजमा बेगम की बेटी और दामाद भी इस हादसे में मारे गए थे। वे कहती हैं, नजमा कह रही थी कि औरों की तरह मुझे भी न्याय की दरकार है। कई लोग मारे गए, ये इमारत गिरी कैसे? ये लोग इमारत की हालत के बारे में जानते थे, लेकिन फिर भी लोगों को काम पर जाने के लिए इन्होंने मजबूर किया। क्या ये साफ साफ हत्या नहीं है? इन लोगों ने उन सबको मार डाला। हादसे से पहले ही लंबे समय से इस इमारत की जर्जर हालत के बारे में लगातार चिंता जताई जा रही थी, लेकिन इमारत के हालात सुधारने के लिए कुछ भी खास उपाय नहीं किए गए। इस इमारत में कुछ मशहूर कपड़ों के ब्रांड्स के फैक्ट्री सप्लाइंग स्टोर्स थे।
बांग्लादेश में 2 साल पहले हुई ये घटना देश के इतिहास में औद्योगिक जगत की सबसे भीषण घटना बताई गई। हालांकि कहा यह भी जा रहा है कि वहां फैक्ट्रियों में ऐसे ही कम जगह में ज्यादा लोग काम करते हैं और ऐसे हादसों की आशंका अक्सर बनी रहती है। क्यों होता है ऐसा और सरकारी तंत्र इसे रोकने में क्यों नाकाम होता है? इन्हीं सवालों को जानने के लिए हमारे साथी रोहित जोशी ने बात की ढाका में वरिष्ठ पत्रकार बदरुल एहसान से।
मजदूरों के जो हालात हो तो पहले से ही बुरा था और ये जो एक के बाद एक हादसा हो रहा है, थोड़ा बहुत इम्प्रूवमेंट हो रहा है। इम्प्रूवमेंट इन द सेंस कि वो पब्लिक अवेयरनेस हम लोग जान रहे हैं और ये लोग दिखाने की कोशिश कर रहे हैं इनके जो कंडीशन है, इनके हालात जो है, काम करने जहाँ काम करते हैं फैक्ट्री में इनके हालात इम्प्रूवमेंट किया जाए। तो फिर भी हम अपने दिल पे हाथ रखकर ये नहीं कह सकते कि इनके हालात पिछले 2 साल से, यानी कि जब से ये राणा प्लाजा कोलैप्स हुई है, काफी अच्छा हुआ है। क्योंकि आप समझ सकते हैं कि 2 साल गुजर गए, 2 साल गुजरने के बाद आज इन पुलिस ने इनके बारे में 42 यानी 42 लोगों के बारे में उनके खिलाफ चार्जशीट दायर किया हुआ है। तो इससे जाहिर है कि हालात अब तक अच्छे नहीं हुए। अब तो चार्जशीट तो हो गया है, फिर अब देखना है कि ये केस कहाँ तक चलता है।
ये अक्सर इस तरीके से लापरवाही के मामले सामने आते रहते हैं, तो क्या सरकारी अधिकारियों के साथ इस तरीके के जो फर्म होते हैं उनके मालिकों का क्या गठजोड़ है जिससे कि कोई कार्रवाई नहीं हो पाती?
अब देखिए, हमारे मुल्क में एक समस्या ये है कि ये जो लोग हैं, जो फैक्ट्री के मालिक हैं, इंडस्ट्रियलिस्ट हैं और दूसरे प्रोफेशन के लोग जो हैं, ये लोग किसी न किसी तरह इनके लिंक्स सरकार के साथ रहती, ये सरकार हो या पिछला सरकार हो, इनका लिंक्स रहता है। मैं ये कह सकता हूँ और मेरे साथ और भी लोग वाकिफ मुतकिफ है कि ये जो चार्जशीट हुआ है, केस कहाँ तक चलेगी, जस्टिस मिलेगी या नहीं, हमें इस पर कोई भरोसा नहीं है।
जो बड़े बड़े ब्रांड्स के इधर इस जो राणा प्लाजा था, इसमें बड़े बड़े ब्रांड्स के अपने फैक्ट्री सप्लाई स्टोर थे, तो इतने बड़े ब्रांड जो कि बेसिकली इंटरनेशनल ब्रांड्स हैं, तो क्या उन्होंने भी अपना ख्याल नहीं रखा कि किस तरीके से एम्प्लॉयज उधर काम कर रहे हैं, उनकी वर्किंग कंडीशंस का ख्याल? और क्योंकि पूरे दुनिया भर में भी उनकी आलोचना हो रही है इसके लिए।
अगर ख्याल रखते तो ये एक्सीडेंट तो होता नहीं है। यहाँ हमारे यहाँ चीप लेबर है, ये लोग देखते हर साल के बाद साल ये देखते आए हैं कि ये लोग बांग्लादेश में लेबर चीप है, वो ही देखते रहे। अब जब एक्सीडेंट जो हो गया, दुर्घटना जब हो गया, फिर उनको ख्याल आया, फिर भी इस दुर्घटना के बाद भी मेरे ख्याल में अब तक उन्हें ये कॉन्शियसनेस नहीं आया कि वो सारे और जितने सारे फैक्ट्री वगैरह गारमेंट्स फैक्ट्री के ऊपर इनके जो ब्रांड लोग हैं, ये ब्रांड एम्बेसडर वगैरह कुछ देर बाद ही ढाका में आ जाते हैं, प्रोग्राम भी करते हैं। ये राणा प्लाजा की दुर्घटना है, इससे जाहिर हुआ है कि ये इनकी इनकी इंटरेस्ट वो प्रॉफिट मोटिव ही था और लेबर चीप है, बांग्लादेश लेबरर्स चीप तरीके से मिलते, यही ख्याल था उनका।
ये थे ढाका से वरिष्ठ पत्रकार बद्रुल एहसान।
दिन भर भारतीय समय अनुसार शाम 7:30 बजे और रात 9:30 बजे।
और अब बात करते हैं भारत में राजनीति से जुड़ी कुछ खबरों की। इस बार के आम बजट में सर्विस टैक्स को 12.36% से बढ़ाकर 14% किया गया था और आज से ये बढ़ी दरें लागू हो गई हैं। जाहिर है इससे तमाम चीजें महंगी हो गई हैं। इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक न्यूज एजेंसी को दिए साक्षात्कार में ये घोषणा की कि अच्छे दिन आ गए। साक्षात्कार में प्रधानमंत्री ने और भी कई बातें की हैं। मैंने अपने वरिष्ठ सहयोगी जुबैर अहमद से इस बारे में चर्चा की और सबसे पहले अच्छे दिन के इस विरोधाभास पर ही सवाल किया।
देखिए, जब पिछले साल चुनावी मुहिम में वो भाषण दिया करते थे तो अक्सर ये वादा करते थे वोटरों से कि अच्छे दिन आने वाले हैं, अगर आप नरेंद्र मोदी को वोट देंगे, भारतीय जनता पार्टी को वोट देंगे और वो बहुमत में आए तो जनता के अच्छे दिन आएंगे। तो आज से आपने जैसे कहा कि सर्विसेज टैक्स में इजाफा हुआ है तो जाहिर है लोग इसको बहुत अच्छा नहीं मानेंगे। मोदी सरकार ने पिछले एक साल में कुछ कदम तो उठाए हैं जिससे कि लोगों को राहत मिले, जैसे कि उन्होंने मेक इन इंडिया का प्रोजेक्ट बहुत बड़ा शुरू किया है, डिजिटल इंडिया का प्रोजेक्ट शुरू किया है, जिसका प्रभाव हो सकता है कि इस साल ना पड़े लेकिन अगले साल इसका असर होगा, नौकरियां शायद लोगों को मिलने लगेंगी। लेकिन ज़मीनी सच्चाई ये है कि एक पूरे 120 करोड़ जो भारत की आबादी है उसमें से अधिकतर लोगों की जो हकीकत पहली थी एक साल पहले, जो उनका हाल था, उसमें कोई बदलाव नहीं आया, कोई परिवर्तन नहीं आया। तो मुझे ऐसा लगता है कि मोदी जी ने जो इस इंटरव्यू में कहा कि अच्छे दिन आ चुके हैं, इसको चैलेंज किया जा सकता है।
जुबैर साहब, चुनाव से पहले बीजेपी का एक नारा था सबका साथ सबका विकास, और प्रधानमंत्री बनने के बाद नरेंद्र मोदी कई बार उसको उद्धृत कर चुके हैं, उसका जिक्र कर चुके हैं। आज के इंटरव्यू को अगर देखा जाए तो उसमें उन्होंने बात की है कि अल्पसंख्यक समुदाय के खिलाफ किसी तरह की बयानबाजी जो है बर्दाश्त नहीं की जाएगी। किसको ये बात नरेंद्र मोदी कह रहे हैं?
देखिए, ये पहली बार उन्होंने नहीं कहा है, पहले एक दो बार भी उन्होंने ये बात कही है और बिल्कुल जोर देकर कही है। लेकिन सच्चाई ये है कि पिछले एक साल में अल्पसंख्यकों के खिलाफ भड़काऊ बयान बढ़ गए हैं और घर वापसी और शादियों वादियों को जो चक्कर है कि आप हिंदू मुस्लिम शादियां ना हो, इस तरह की चीज़ें जो है ज़्यादा होने लगी हैं पहले के मुकाबले में, हालांकि पहले भी ये सब चीज़ें होती थी। तो जो बयानात आए हैं संघ परिवार की ओर से, उस पर मुझे ऐसा नहीं लगता है कि प्रधानमंत्री ने सार्वजनिक तौर पर अंकुश लगाने की बात कही हो या उनको मना किया हो या उस पर कोई अपनी टिप्पणी दी हो, वो खामोश रहे पूरे एक साल में। तो अब तक जो इस तरह के बयानात आए हैं सामने, उस पर ना पार्टी ने कभी कोई एक्शन लिया हो और ना सरकार ने एक्शन लिया है। तो जब तक ज़मीनी सतह पर एक्शन नहीं लिया जाएगा ऐसे लोगों के ख़िलाफ़ जिन्होंने भड़काने का काम किया हो या ऐसे कंट्रोवर्शियल बयान दिए हों जिससे कि माइनॉरिटीज़ को तकलीफ़ पहुंची हो, तब तक उनको यकीन कैसे होगा कि प्रधानमंत्री मोदी 120 करोड़ लोगों को साथ ले चलने की बात करते हैं तो वो भी उसमें शामिल है।
और ज़ुबैर साहब, और क्या ख़ास बातें रहीं इस लंबा इंटरव्यू है इसमें, और उन्होंने कौन सी ऐसी नई चीज़ें कही हैं जो अभी तक दूसरे किसी साक्षात्कार में नहीं कही हों?
देखिए, मुझे तो नहीं लगता है कि उन्होंने कोई नई बात इस इंटरव्यू में कही हो। 4-5 मुद्दों पे बात की उन्होंने। अभी हमने अल्पसंख्यक की बात की, उसके बाद हमने अच्छे दिन की बात की, और उन्होंने पाकिस्तान से भारत के रिश्तों पे भी रोशनी डाली है। और उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान से उसी वक्त रिश्ते सुधरेंगे जब तक पाकिस्तान हिंसा का रास्ता न छोड़ दे। उन्होंने बात की है लैंड रिफॉर्म बिल की, भूमि अधिग्रहण बिल के बारे में बात की। उनका ये कहना है कि ये बिल बहुत अच्छा है और इसका विरोध करने वाले सिर्फ सियासी लोग हैं और ये कि इसको पॉलिटिकल कलर दिया जा रहा है। हालांकि ये जो बात उन्होंने कही है इसको डिस्प्यूट किया जा सकता है, क्योंकि बहुत सारे किसान हमें मिले हैं जिन्होंने इसकी मुखालफत की है और दिल्ली में आके प्रदर्शन भी किया।
ये थे बीबीसी संवाददाता जुबैर अहमद। और चर्चा करते हैं तमिलनाडु की। तमिलनाडु की मुख्यमंत्री जयललिता की आय से अधिक संपत्ति के मामले में पिछले दिनों हाईकोर्ट ने उनके खिलाफ लगे आरोपों को खारिज करते हुए उन्हें बरी कर दिया था, लेकिन कर्नाटक सरकार ने इस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील करने का फैसला किया है। सितंबर 2014 में जयललिता को निचली अदालत ने 1997 के इस मामले में 5 साल की जेल की सजा सुनाई थी। जयललिता को न केवल मुख्यमंत्री का पद छोड़ना पड़ा था बल्कि उन्हें जेल भी जाना पड़ा था, लेकिन इस साल 11 मई को हाईकोर्ट में अपील करने पर उन्हें राहत मिली जब उन्हें आरोपों से बरी कर दिया गया। इसके बाद 23 मई को वे दोबारा तमिलनाडु की मुख्यमंत्री बनी हैं। सुनिए बेंगलुरु से इमरान कुरैशी की ये रिपोर्ट।
यह निर्णय तो आना ही था। आय से अधिक संपत्ति केस के स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर बीवी आचार्य की सिफारिश थी कि कर्नाटका सरकार को हाईकोर्ट के निर्णय के खिलाफ अपील करना जरूरी है। उनके दो कारण थे। पहला था कि सरकारी वकील की ना मौजूदगी में फैसला लिया गया। दूसरा कारण यह था कि हाईकोर्ट गणितीय त्रुटियों के आधार पर निर्णय लिया था। आचार्य की सिफारिश को राज्य के एडवोकेट जनरल ने भी समर्थन किया। कर्नाटका की कांग्रेस सरकार पर तमिलनाडु के विपक्षी दलों ने भी दबाव डाला। उस बीच जयललिता मुख्यमंत्री का पद भी संभाल लिया। कर्नाटका के कानून मंत्री टीबी जयचंद्रा कहते हैं,
एज पर लॉ अपील अगेंस्ट एन ऑर्डर 90 डेज इज देयर।
इसमें कोई देरी नहीं थी। पहले तो स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर का निर्णय आ गया, उसके बाद एडवोकेट जनरल का भी आया। कानूनी डिपार्टमेंट ने एडवोकेट जनरल से कुछ स्पष्टीकरण मांगी थी। उसके आने के बाद लॉ सेक्रेटरी की भी सिफारिश आई, तो आज कैबिनेट में यह निर्णय लिया गया। ये थे टीबी जयचंद्रा के शब्द। तो इस निर्णय से तमिलनाडु के राजनीतिक जीवन पर कोई असर पड़ेगा जबकि जयललिता मुख्यमंत्री बन गई हैं? हमने यह सवाल राजनीतिक विश्लेषक भगवान सिंह से पूछा। उन्होंने कहा,
An element of uncertainty has been re-injected into Tamil Nadu.
तमिलनाडु की राजनीति में अनिश्चितता का माहौल फिर से आ गया है। 8 महीनों से जब वह मुख्यमंत्री पद पर नहीं थी तो सरकार लिम्बो में थी, और अब जब जयललिता आर के नगर से उपचुनाव की तैयारी कर रही हैं, तो कर्नाटका का निर्णय आ गया है। सुप्रीम कोर्ट क्या फैसला लेगा वो तो कोई नहीं कह सकता। ये केस तो 19 साल से चल रहा है, तो कब निर्णय आएगा वो कोई नहीं कह सकता। ये थे भगवान सिंह के शब्द। जाहिर है कि जब तमिलनाडु के विधानसभा के चुनाव सिर्फ 1 साल के बाद ही हो तो अनिश्चितता का माहौल बढ़ेगा ही। सवाल इतना ही है कि क्या इस साल विपक्षी दल जयललिता के खिलाफ एक मजबूत गठबंधन बना सकेंगे या नहीं। बेंगलुरु से इमरान कुरैशी।
बीबीसी हिंदी से आप सुन रहे हैं कार्यक्रम दिनभर, समीर आत्मज मिश्र से। कार्यक्रम में आगे बाकी हैं श्रोताओं के पत्रों के उत्तर और खेल जगत की खबरें, लेकिन उससे पहले चर्चा करते हैं पाकिस्तान की। पाकिस्तान के खैबर पख्तून प्रांत में हिंदुओं की आबादी लगातार घटती जा रही है। अच्छी शिक्षा, हुनर और रोजगार के अभाव में यहाँ हिंदुओं के पास अपने भविष्य को लेकर कोई खास उम्मीद भी नहीं है, और सांप्रदायिक तनाव ने भी इस आबादी को हाशिए में धकेला है। बीबीसी उर्दू सेवा की संवाददाता उरूद जाफरी ने पेशावर में हिंदू समुदाय की घटती आबादी और हालातों का जायजा लिया। सुनिए उनकी ये खास रिपोर्ट।
पाकिस्तान के सूबे खैबर पख्तूनख्वा में इस वक्त तकरीबन 50,000 के करीब हिंदू आबाद हैं, जो आज से नहीं बल्कि पीढ़ियों से यहाँ बैठे हैं। लेकिन हाल ही में पेशावर जाके बहुत से हिंदुओं से मिलके ऐसा लगा जैसे वो अब इस इलाके में मायूसी का जीवन बिता रहे हैं और उनकी आने वाली नस्लों के लिए कुछ नहीं रखा। हिंदू कम्युनिटी के मसाइल पर काम कर रहे जाने माने एक्टिविस्ट हारून सरबदयाल के मुताबिक,
मेल जो यूथ हैं गलत हाथों में इस्तेमाल होकर वो अमूमन आसान जरिया जो है, क्योंकि हुनर भी नहीं है, तालीम भी नहीं है, रोज़गार भी नहीं है, नौकरियां भी नहीं है, तो वो जो है वो ये जो शराब के परमट हैं इसकी तरफ आकर जो है बेचने वाले हैं, वो इनको अकोमोडेट करते हैं, ये आगे बेचते हैं, और जब पैसा हराम तरीके से आता है وہ سوسائٹی کے درمیان اور اپنی کمیونٹی کے درمیان جو ہے وہ بدماش بن کر جو ہے نا وہ یہاں تک کہ قتل کے کئی ایک واقعات ہمارے درمیان ہو چکے ہیں۔
یہ جان کے دکھ ہوا کہ ہندو نوجوان آج پشاور شہر میں تعلیم کے بجائے شراب بیچنے کے پرمٹ حاصل کرنے میں زیادہ کامیاب نظر آتے ہیں۔ میں نے مشہور قصہ خانی بازار کے جنگی محلے میں برسوں سے اپنا پریس چلا رہے ہسٹورین یا تاریخ دان ابراہیم ضیاء صاحب سے مل کے ہندوؤں اور پشاور کا اتہاس جانا، تو وہ کچھ یوں تھا۔
محمود غزنوی کے جو دادا تھے سبکتگین، جب یہ آئے تو پھر انہوں نے غزنوی فتح کیا، پھر اس کے بعد آسا تھا، پھر انہوں نے کابل فتح کیا، تو یہ پھر جو ہے تو ہندو آبادی پیچھے آتی گئی۔ 1947 تک جو ہے تو ہندو سکھ یہاں آباد تھے، تو بڑا پرامن ماحول تھا، کاریگر جو تھے مسلمان ہوتے تھے، مالک جو ہے تو کارخانہ ہے، مثال کی بات ہے، یا اخبار ہے، یا پرنٹنگ پریس ہے، یا سنیما ہے، تو یہ ہندوؤں کے تھے۔ مسلمانوں کو صرف ایک ہی سنیما گھر تھا یہاں پہ، باقی 6-7 سنیما جو تھے ہندوؤں کے تھے۔
اتہاس اتنا قیمتی اور حال اتنا تکلیف دہ، آخر کیا وجہ رہی، یہ کھوجنا ضروری بنتا ہے۔ مٹھی ضلع تھرپارکر کے ڈاکٹر سونو کھنگرانی، جو اپنی کمیونٹی کے حالات پر کڑی نظر رکھے ہوئے ہیں، اس پر بولے،
ویزیبلٹی کم ہو گئی ہے، لوگ نظر نہیں آتے، نہ بزنسز میں، نہ کلچر میں، نہ ان کی ڈریس کے حوالے سے، تو جب ویزیبلٹی نہیں ہے تو وہ نہ سرکار کو نظر آتے ہیں، نہ کسی اور کو نظر آتے ہیں، تو سرکار کی پرائیورٹی نہیں ہے یقیناً میرے حساب سے، خاص طور پہ کے پی کے میں۔
ڈاکٹر سونو کا مزید کہنا تھا کہ خیبر پختونخوا کے سیکیورٹی حالات نے بھی ہندو کمیونٹی کو یہاں کونے میں کر دیا ہے، اور لگتا ہے کہ کچھ برسوں کے بعد شاید کے پی کے صوبے میں ان کا نام و نشان ہی ختم ہو جائے۔
ریلیجیس فنڈامنٹلزم ہے، ان کی طرف سے تھریٹ بھی ہیں، حالانکہ ان کو کوئی ابھی جانی نقصان نہیں ہوا ایسا، لیکن ظاہر ہے ان کی پراپرٹیز پہ نظر ہے، لوگوں کی، ان کے پلاٹس پہ نظر ہے، تو وہ چاہ رہے ہیں کہ یہ اسپیس بھی کسی اور قبیلے کو مل جائے، کسی اور ریلیجن کے بندے کو مل جائے، اور ان لوگوں کو یہاں سے یا تو یہ کنورٹ ہو جائیں۔ اور بہت سارے لوگ جو ہیں نا پچھلے 15-20 سال سے اپنے نام بدل رہے ہیں، تو یہ بڑا امپورٹنٹ فیکٹ ہے، یہ سارا انسیکیورٹی کا نتیجہ ہے۔
اس سب صورتحال پر کے پی کی سرکار کیا وچار رکھتی ہے، میں نے صوبائی انفارمیشن منتری جناب مشتاق غنی کو فون ملا کے پوچھا، تو وہ بیچارے اس ایشو سے لا علم تھے۔ میرا شکریہ ادا کیا اور بولے کہ آپ کی وساطت یا آپ کے ذریعے ہی یہ سب پتا چل سکا ہے۔
کسی فورم پہ ہائی لائٹ نہیں ہوا، اسمبلی میں ان کے نمائندگی موجود ہے، وہاں پہ کبھی ہائی لائٹ نہیں ہوا۔ اب بھی آپ کی وساطت سے کہ اگر ان کے کوئی گریوینسز ہیں تو وہ ہم مجھے ملیں، وزیراعلیٰ کو ملنے، اپنے منسٹر اقلیتی امور کو ملنے، اور جو بھی ان کے جائز چیزیں ہوئی، وہ پاکستان کے شہری ہیں، صوبے کے شہری ہیں، ہم ان کے انشاءاللہ مسائل مسئلے جو بھی ہیں حل کریں گے۔
مشتاق غنی صاحب کو انٹرویو کرنے کے بعد میں یہ سوچتی رہی کہ پشاور جس پر کبھی ہندو راج کر گئے، آج انہیں ایک منتری تک پہنچنا اتنا مشکل کیوں ہے؟ کہیں ایسا تو نہیں کہ واقعی کچھ سال بعد ہم اس صوبے میں ہندو قوم کا نام لیں اور لوگ کہیں، ہاں کبھی ہوا کرتے تھے پر اب تاریخ کا حصہ ہو گئے۔
پشاور سے عروج جعفری کی یہ رپورٹ آپ کو کیسی لگی ہمیں ضرور لکھیے گا۔ اور اب وقت ہو چلا ہے آپ کے پتروں کا، سنیے آپ کی رائے۔
آپ کی رائے، سویکار کیجیے راجیش جوشی کا نمسکار،
اور نمسکار میرا شالو یادو کا بھی۔
تو شالو جی، آج چٹھیوں کی شروعات میں ایک بہت ہی خوبصورت سے کارڈ سے کرتا ہوں، اور یہ کارڈ پکٹوریل ہے، اس میں تصویریں ہیں۔ اس کو بھیجنے والے ہیں رضوان انصاری، مجلس پارک، آدرش نگر، دلی 33۔
یہ تو میرے پڑوس سے ہی آیا ہے، میں زیادہ دور نہیں رہتی ہوں آدرش نگر سے۔
ارے واہ، بہت اچھا۔ تو یہ رضوان صاحب نے کارڈ بھیجا ہے، گلابی رنگ کا، بہت خوبصورت لکھا ہے 75th ہیپی اینیورسری، اور اپنی تصویر لگا رکھی ہے۔ اندر کھولتے ہیں تو دیکھیں، یہ ریحان صاحب کی دو فوٹو ہیں اس میں، آگے میری اور منوج واجپئی کی تصویر ہے، اس میں بھی بہت ساری چیزیں انہوں نے لکھی ہیں، جیسے کارٹون اسٹرپ میں ہوتا ہے، کچھ منوج کہہ رہے ہیں، کچھ میں کہہ رہا ہوں۔ اور تیسرے پنے پہ ہے سوشیلا سنگھ کی تصویر، اور سامنے والے پنے پہ موہن لال شرما کی تصویر۔ سوشیلا کے لیے شعر لکھا ہے رضوان نے، تجھ کو سوچا تو بہت پر لکھا کم میں نے، کہ تیری تعریف کے قابل میرے الفاظ کہاں۔ واہ واہ، کیا بات ہے۔ ایسے ایسے شروتا ہمارے بی بی سی ہندی کے موجود ہیں جو اتنی محبت کرتے ہیں، بہت بہت شکریہ۔
जी आगे बढ़ते हैं। श्रीकाकुलम आंध्र प्रदेश से ये ईमेल भेजी है डॉक्टर सत्य कमलाकर वज्जल ने। लिखा है, मैं दृष्टिहीन हूँ और एक सरकारी महाविद्यालय में हिंदी प्रोफेसर की हैसियत से कार्यरत हूँ। पिछले दिनों बीबीसी हिंदी प्रसारण के 75 वर्ष संपन्न होने के अवसर पर आपने जो कार्यक्रम प्रसारित किए थे, मैंने वो सभी सुने। आगे लिखते हैं कि लगता है इंडिया बोल में आप दक्षिण भारतीयों के फोन कॉल्स लेना पसंद नहीं करते हैं।
कमलाकर जी, आप श्रीकाकुलम में हमारे कार्यक्रम सुनते हैं, ये बेहद खुशी की बात है। हमें अफसोस इस बात का है कि आप अभी तक इंडिया बोल में हिस्सा नहीं ले पाए। आप हमें अपना नंबर तो भेजिए, हम कोशिश करेंगे कि आपको कार्यक्रम में शामिल किया जाए। यूं ही सुनते रहें और लिखते रहें।
जी बिल्कुल। आगे बढ़ते हैं, असम के नौगांव से सुरेंद्र नाथ सिंह ने लिखा है, रेहान फजल द्वारा प्रस्तुत एवरेस्ट फतेह की जीवंत और रोंगटे खड़े कर देने वाली प्रस्तुति के लिए रेहान फजल को कोटि कोटि धन्यवाद। वाकई बीबीसी हिंदी यूं ही इस मुकाम पर नहीं है, इस मुकाम पर है तो अपने इसी प्रकार के संवाददाताओं की कठिन शोध पर आधारित कार्यक्रमों के मजबूत पर।
जी, नौगांव से सुरेंद्रनाथ सिंह जी, आप हमारे पुराने श्रोता हैं, अपनी प्रतिक्रिया, प्रशंसा और आलोचना हम तक आप पहुंचाते रहे हैं। इसी तरह सुनते रहिए, इसी तरह हमारे साथ बने रहिए, बहुत बहुत शुक्रिया।
और अब आगे बढ़ते हैं, राजेश जी, ये शिकायत भरी ईमेल हमें भेजी है बाड़मेर राजस्थान से रूपेश कटियार ने।
जी, क्या लिखते हैं, क्योंकि शिकायती ईमेल पर या चिट्ठियों पर मेरा खास ध्यान रहता है
जी, क्योंकि बिल्कुल
श्रोता को वाकई लगता है कि कुछ गलती हमने की है, कुछ गड़बड़ की है, तो बताइए क्या लिखते हैं।
वो लिखते हैं, वैसे तो बीबीसी निडर है लेकिन जब भी दलितों का मुद्दा आता है तो आप खामोश हो जाते हैं। आपने 5 दलितों की हत्या पर रिपोर्ट भी नहीं की। बाबा साहेब की रिंगटोन सुनने पर दलित युवक की हत्या जाती है और उस पर आपने रिपोर्ट नहीं की। केंद्र में बीजेपी सरकार के आने के बाद इस तरह की घटनाएं बढ़ती जा रही हैं। वे लिखते हैं कि दलित हिंदू समाज के अंग हैं लेकिन हिंदुओं से खुश नहीं हैं।
रूपेश कटियार जी, आपकी ये राय हम बहुत ही गंभीरता से इसको लेते हैं। अगर आपको याद हो तो हमने दलित समाज के मुद्दों पर बीबीसी रेडियो और वेबसाइट पर एक श्रृंखला चलाई थी जिसमें बहुत सारे दलित बुद्धिजीवियों से हमने बात की थी, आम लोगों से बात की थी। तो ऐसा नहीं है कि बीबीसी दलितों के मुद्दे पर खामोश रहती है। हाँ, ये ज़रूर कई बार ऐसा हो जाता है कि कुछ खबरें रह जाती हैं, पर इसका ये अर्थ कतई नहीं है कि हमारा ध्यान उधर की तरफ नहीं जाता। हमारे पास शालू समय कम है, एक और बहुत खूबसूरत सी चिट्ठी मेरे पास,
रंग-बिरंगी चिट्ठी है।
जी हाँ, ये मैं पढ़ना चाहता हूँ, जिसे भेजा है अवधेश कुमार बुश हाउस। बुश हाउस पे गलतफहमी मत आइएगा, ये बुश हाउस गोकुलपुर पूर्णिया बिहार में है और इन्होंने अपनी सुंदर हैंडराइटिंग में लिखा है, हिंदी सेवा के 75 साल पूरे होने पर प्रस्तुत संपूर्ण विवेचना सुनकर मन मयूर खिल उठा, यानी कहना चाहते हैं मन मयूर नाच उठा। आगे लिखते हैं, जादू भरी मधुर आवाज की मल्लिका स्वर साम्राज्ञी अचला शर्मा एवं कैलाश बुधवार तथा सीमा चिश्ती एवं परवेज आलम की संयुक्त प्रस्तुति शानदार एवं मोहक रही। आगे लिखते हैं, बीबीसी कल भी शानदार थी और आज भी लाजवाब है, बीबीसी कल भी पास पास थी और आज भी करीब है।
वाह वाह।
बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस बेहतरीन चिट्ठी लिखने के लिए अवधेश कुमार जी, लिखते रहिए। आप भी हमारे बहुत पुराने श्रोता हैं लेकिन अब मुझे लग रहा है कि समय हमारे पास कम है। अगर शालू यादव आपकी इजाजत हो तो पता बता दें।
जी बिल्कुल,
पता नोट कीजिएगा, बीबीसी हिंदी सेवा, पोस्ट बॉक्स 3035, नई दिल्ली 110003,
और ईमेल
hindi.letters@bbc.co.uk। नमस्कार।
और अब कार्यक्रम के आखिर में एक नजर डालते हैं खेल की खबरों पर। हमारे साथ सामने आदेश कुमार गुप्त हैं। जी आदेश जी।
जी देखिए समीर जी, फ्रेंच ओपन टेनिस टूर्नामेंट में वो दौर शुरू हो गया जहां से दिग्गज खिलाड़ियों की वापसी भी हो सकती है और कुछ खिलाड़ी आगे भी बढ़ सकते हैं। इसी कड़ी में आज चौथे दौर के मुकाबले में स्पेन के डेविड फेरर और दूसरी वरीयता हासिल स्विट्जरलैंड के रॉजर फेडरर और इनके अलावा तीसरी वरीयता हासिल ब्रिटेन के एंडी मरे अपने अपने मुकाबले जीतने में कामयाब रहे। लेकिन महिला एकल वर्ग में चेकोस्लोवाकिया की लूसी सफारोवा ने बड़ा उलटफेर करते हुए दूसरी वरीयता हासिल रूस की मारिया शारापोवा का सफाया कर दिया। उन्होंने 7-6, 6-4 से मुकाबला अपने नाम किया। उधर न्यूजीलैंड ने इंग्लैंड के सामने दूसरे टेस्ट मैच में जीत के लिए 455 रनों का लक्ष्य रखा है और बारिश के कारण फिलहाल खेल रुका हुआ है और जब खेल रुका तब इंग्लैंड ने अपनी दूसरी पारी में बिना किसी नुकसान के 44 रन बना
लिए थे। बहुत बहुत धन्यवाद आदेश कुमार गुप्त खेल की खबरों के लिए। और अब एक नज़र प्रमुख समाचारों पर।
बांग्लादेश में राना प्लाजा फैक्ट्री कॉम्प्लेक्स के मालिक सोहेल राना समेत 42 लोगों पर हत्या के आरोप में मामला चलाया जाएगा। 2013 में राना प्लाजा कॉम्प्लेक्स की इमारत ढह जाने से 1000 से ज्यादा लोग मारे गए थे। इराक के अनबार प्रांत के इस्लामिक स्टेट के आत्मघाती हमलों में सुरक्षा बलों के 45 सदस्यों के मारे जाने की खबर है। हमलावरों ने विस्फोटकों से लदी 3 गाड़ियां रामादी शहर में सैनिक बेस में घुसा दी। व्हाइट हाउस ने अमेरिकी नागरिकों के फोन डेटा इकट्ठा करने के लिए आतंक निरोधी कानून में बदलाव नहीं कर पाने के लिए अमेरिकी सीनेट को गैर जिम्मेदार बताया है। अमेरिकी सीनेट में इस हफ्ते फिर से इस मुद्दे पर वोटिंग हो सकती है। मलेशियन एयरलाइंस ने अपने 1/3 कर्मचारियों यानी 6000 कर्मचारियों को निकालने की घोषणा की है। कंपनी ने कहा है कि दिवालिया होने की वजह से ऐसा किया जा रहा है। बीबीसी समाचार।
तो दिन भर में आपसे विदा लेने का वक्त आ गया है। कार्यक्रम को आप तक पहुंचाने में तकनीकी सहयोग दिया अजीत सारथी ने। अब से 1.5 घंटे बाद 9:30 बजे आपसे फिर मुलाकात होगी कार्यक्रम घटना चक्र में। समीर आत्मज मिश्र को दीजिए इजाजत। नमस्कार।